शांति शांति शांति। आज आपके समक्ष ईश्वर शरणागति पर विचार विमर्श करेंगे। कुछ लोगों की इच्छा है कि भाई ईश्वर शरणागति, कई लोगों ने कहा ऐसा है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा जिसका नाम है उसका अस्तित्व है, और जो आप सोचते हैं उसका भी अस्तित्व है। चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से, अध्यात्म में भी आया है जो आप सपना देखते हैं वह भी कहीं न कहीं उपस्थित है। एक प्रश्न उठा कि स्वामी जी मैंने देखा सपने में कि आदमी के सिर पर घोड़े का सिर है, शेर का है कि गधे का है। तो अब मनोविज्ञान क्या कहता है, स्वप्न में विवेक व्यवस्थित नहीं रहता। आपने जागृत में आदमी भी देखा है, शेर भी देखा है, घोड़ा भी देखा है, गधा भी देखा है, पंछी भी देखा है, लेकिन स्वप्न व्यवस्थित नहीं है। इसलिए आदमी के सिर पर शेर का चेहरा देखा, तो मनोविज्ञान कहता आपने आदमी भी देखा, शेर भी देखा, लेकिन स्वप्न में आदमी के सिर पर शेर का देखा, लेकिन देखा दोनों है, व्यवस्थित नहीं है। बाकी शेर भी आप देखे हैं, आदमी भी देखे हैं। तो विज्ञान भी कहता है जिसका अस्तित्व है उसका कोई आकार है, और आकार है तो उसका नाम हमने दिया। इसलिए जब हम कहते हैं ईश्वर शरणागति, आपने भी ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन विज्ञान भी कहता है कि वह है, तभी आप उसका नाम ईश्वर दिए, परमात्मा दिए, जो भी दिए। फिर से समझ लीजिए, नाम हम देते हैं, हमारे नाम देने से अस्तित्व बनता नहीं। अस्तित्व है समझने के लिए हम नाम देते हैं। एक गुलाब का फूल है, आप अंग्रेजी में बोलिए, तमिल में बोलिए, तेलुगु में बोलिए, हिंदी में, गुजराती में, भाषा कोई भी हो, लेकिन पहले आपने अस्तित्व को देखा। और आप अंग्रेजी जानते हैं इसलिए रोज, जो पहली बार जिसने देखा होगा, हिंदी वाले गुलाब का फूल बोलेंगे, लेकिन गुलाब कहने से या रोज कहने से अस्तित्व बनता नहीं। अस्तित्व है समझने के लिए आपने नाम दिया। पहले आपका और हमारा जन्म हुआ, फिर नाम दिया गया। कुछ देशों में ऐसा रिवाज है, खास करके अमेरिका में, कि जन्म के पहले आपको दो नाम देने पड़ते हैं। तो लोग अमेरिका में रहते हैं, इस नियम को जानते हो। जन्म से पहले दो नाम देने पड़ते हैं, एक बालक का एक बालिका का। क्योंकि मेरे पर भी फोन, मैं जानता तो पहले से भी हूँ क्योंकि गया हूँ, लेकिन मेरे पर अभी भी फोन आते हैं, स्वामी जी भगवान की कृपा हुई है, संतों का आशीर्वाद हुआ है, मुझे दो नाम दीजिए, एक मेल एक फीमेल, एक बालक एक बालिका का। तो जानते हुए भी मैं पूछता, क्यों भाई? स्वामी जी हाँ, पहले दो नाम लिखाने पड़ेंगे। अमेरिका बालक होगा तो बालिका होगी तो। तो मैंने कहा आजकल तो सोनोग्राफी चलती है, ये चलती है सब, आप करके एक नाम लिखाइए ना। नहीं नहीं अभी तो ऐसा नहीं, आप दो नाम दीजिए। तो वही देखिए, संभावना में हमने एक नाम नहीं दिया, जब तक वो प्रकट नहीं हुआ, फिर सामने नहीं आए, तो अनुमान से हमने दो नाम दिया। अगर बालक होगा तो ये नाम रखेंगे, बालिका होगी तो ये नाम रखेंगे, और जब अस्तित्व प्रकट हुआ तो बालक हुआ तो बालक का नाम दिया, बालकी हुई तो बालकी का नाम दिया। लेकिन प्रकट होने के बाद ही निश्चय होता है क्या नाम दे। इसी तरह से आप किसी चीज का नाम परिचय में, व्यवहार में, समाज में पहचानने के लिए रखते हैं तो उसका अस्तित्व है। अब हमारा अनुभव क्या कहता है, हमारा जो अनुभव है, वेद है, शास्त्र है, ऋषियों का अनुभव है। आपने दूध को नहीं देखा फिर भी दूध का नाम सुना है माँ से, पिता से। आपको माता पिता विश्वास है इसलिए जानते हैं दूध होता है। आप इंग्लैंड अमेरिका नहीं गए, लेकिन आपका मित्र, आपके माता पिता जो अमेरिका देखे हैं, इंग्लैंड देखे हैं, वो कहते हैं तो मानते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा नाम आपने सुना है और विश्वास है, इसलिए उसके लिए मंत्र दिया तत्सेवा। अभी आपने अमेरिका को देखा नहीं, लेकिन माता पिता दोस्त या परिचय पठन पाठन से जानते हैं अमेरिका। अमेरिका का नाम आपने सुना, तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा जो है उसका नाम आप सुनते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं आपने दूध का नाम सुना, दूध को देखा और दूध को पिया। मंत्र आता है उपनिषदों में तस्य वाहम तवै वाहम त्वमेव वाहम, मैं उसका हूँ, ये परमात्मा के लिए हो, मैं उसका हूँ, तस्य वाहम मैं उसका हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, माता पिता से, समाज से, संस्कृति से, साथ से आपने कहा मैं उसका हूँ, लेकिन अभी आपके सामने नहीं आया, लेकिन आपको विश्वास है कि अमेरिका है, मैं अमेरिका जाऊंगा, वहां रहूंगा, लेकिन विश्वास में आप कह रहे हैं कि अभी देखा नहीं अमेरिका, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा, वहां रहूंगा। इसी रहस्य को समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने, अनुभवी जो सिद्ध थे, जिनको अनुभव था, उन्होंने कहा मैं उसका हूँ, जिसका हूँ अभी देखा नहीं, तत्सै वाहम त्वमेव वाहम। मैं अमेरिका पहुँचा, सामने दूध आया, मैंने देखा, पहले दूध का नाम सुना, अमेरिका का नाम सुना, फिर हमने देखा दूध को, देखा अमेरिका का। अब वेदों में आया तत्सै वाहम त्वमेव वाहम, त्वमेव वाहम का आया प्रतीक उपासना। जब आप मंदिर में जाते हैं वहां मूर्ति देखते हैं, मूर्ति का मंदिर में देखने के बाद उसमें परमात्मा का भाव पैदा होता है, सामने है, मैं उसका हूँ, फिर मैं तेरा हूँ, सामने मूर्ति आई। आप 6 महीने के थे, पिताजी अमेरिका गए, फिर भी आप कहते मेरे पिता का नाम ही है, कहीं कोई फोटो तो मैं इनका पुत्र हूँ, फोटो है, पेपर है, कलर है, लेकिन आपके भाव से पिता है, मैं इनका, जो आप फोटो देख रहे हैं उसका पुत्र हूँ, फोटो मतलब मूर्ति, मैं राम का पुत्र हूँ, कृष्ण का पुत्र हूँ, शंकर का पुत्र हूँ, मैं मंदिर के बाद। तो वेदों ने कहा तुम जिसके हो पहले उसको स्वीकार करो, फिर प्रतीक उपासना में उसके सामने मैं तेरा हूँ, और मैं तेरा हूँ, यहाँ एक साधना की बात आएगी, तो मैं वहां के तत्सै वाहम, तुम्हें वाहम, तस्मय वाहम, या विचार कीजिए। इसको एक सरल भाषा में कहेंगे, मैं उसका हूँ, अभी वो उपस्थित नहीं है, मैं तेरा हूँ, इसका मतलब सामने उपस्थित है, मैं तू ही हूँ। अब इसको समझाने के लिए ये ईश्वर शरणागति मैं तेरा हूँ, इसको समझना पड़ेगा। हमारी परमात्मा से जिन साधनाओं के द्वारा हम अनुभव करना चाहते हैं, शरणागति, संपूर्ण शरणागति, ईश्वर शरणागति, हम बोल चाल की भाषा में शरणागत हो जाते हैं, लेकिन शरणागति का मूल अर्थ है हमारे और उसके बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। इस समय मनीषानंद बोल रहे हैं, अपर लोअर पार्ट ऑफ द लिप्स, इफ ए थर्ड थिंग कम्स आई कांट स्पीक। विज्ञान भी कहता है, मनीषानंद बोल रहे हैं, अगर हमारे पर बोलना है, परमात्मा बोलना है, तुम बोलना है, ये दोनों के बीच में कोई थर्ड चीज आ जाए, उंगली आ जाए, तो मैं परमात्मा नहीं बोल सकता, परमात्मा नहीं बोल सकता। आप सामने बैठे हैं, सामने एक पतला सा कपड़ा आ जाए तो एक झलक दिखाई पड़ेगी, साफ साफ नहीं देख सकता, केवल पर्दे के कारण। ईश्वर शरणागति में है कि नाम उसके अनेक हैं, हजारों नाम हैं, लेकिन जिस साकार प्रतीक उपासना जो आप करते हैं, आप और उसके बीच में दीवार तो नहीं है, कोई पर्दा भी नहीं है, लेकिन जो मन है, विचारों का जो समूह है, वह जितना पवित्र होना चाहिए वो नहीं है। आप अगर बाइबल पढ़ें तो बाइबल में भी आया है, सेंट पॉल जब पूछता है तो वहां पर जीसस क्राइस्ट कहते हैं, तुम जब दूल्हा बनते हो तो कितने अच्छे कपड़े पहनते हो। दुल्हन के लिए भी कहा कि आप लेडीज के लिए कि जब आप दुल्हन बनती हैं तो कितनी सुंदर परिधान को आप स्वीकार करते पहनती हैं, मतलब साधना की दृष्टि से पुरुष या नारी। पुरुष जब दूल्हा बनता है तो कपड़े से, शरीर से कितनी सजावट करता है, कितना आकर्षण पैदा करता है, मैला कपड़ा हो, शरीर में सुगंध लगाई जाती है, इत्र छिड़के जाते हैं, आपको सजा जाता है। आप दुल्हन बने तो भी वही है, अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप में आकर्षण पैदा किया जाएगा, शरीर में सुगंध लगाई जाएगी, अर्थात आप नर हैं कि नारी, लेकिन मन में सफाई सुगंध का आना जरूरी है। नर हैं या नारी, तो जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, सेंट पॉल, एक आदमी जब शादी करता है तो शरीर को कितना शुद्ध रखता है, चाहे नर हो कि नारी। अगर शरीर गंदा होगा, कपड़ा गंदा होगा, तो सामाजिक स्तर पर उसे स्वीकार नहीं किया जाता दूल्हा दुल्हन के लिए, कैसे भी करके उनके शरीर में आकर्षण और सफाई शुद्धता स्पष्टता होना जरूरी है। इसी तरह से मन की एक शक्ति है और मन की शक्ति से ही हम परमात्मा से मिलते हैं। अभी मेरे सामने एक कपड़े का पर्दा है, फिर दो कपड़े आए, फिर तीन कपड़े आए, मोटा होता जाएगा। सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों पर्दे। तमोगुण मतलब क्रोध, अहंकार, लालच, मद मत्सर, ये मोटे पर्दे, ये तमोगुण आया। तमोगुण का पर्दा बहुत मोटा होता है और इसीलिए हम विवेक से हट जाते हैं और गलत बात हमें ठीक लगती है और ठीक बात गलत लगती है। रजोगुण जो है ये है भोजन का, आहार विहार का, अच्छे भोजन के प्रति रुचि होना, अच्छी जगह का देखने का मन में विचार आना, ये है रजोगुण। सतोगुण जो है अच्छे विचार का आना, दान देना, दूसरे की सेवा करना, सबसे मोटा पर्दा है क्रोध का, लोभ का। भगवान बुद्ध ने अपने 24 जन्म का, महावीर ने भी अपने 24 जन्म का उल्लेख किया है और 24 जन्मों की बात में यही कहा है, भोजन के प्रति, भ्रमण के प्रति, चाहे मैं किसी रूप में था लेकिन आकर्षण बना रहा। लेकिन 24 जन्म के बाद जब मैं इस रूप में आया और जिसको हमारे संतों ने, खास तुलसीदास ने कह दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये हमारा आपका नर या नारी के रूप में जो जन्म हुआ है, जो प्रकट हुए हैं, ये बहुत ही मूल्यवान है और बड़ी ही तपस्या के बाद हुआ। आप मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, तब आयु सबसद बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। एक दिन में कोई कलेक्टर नहीं बनता, आपने पढ़ाई की, मेहनत किया, फर्स्ट क्लास आए, कितनी परीक्षाओं को पास किया, फिर आयुष की परीक्षा दी, फिर उसमें आए, इंटरव्यू लिया, और एक पट्टा वाला बनना है तो हमें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन एक हमें उच्च कोटि का ऑफिसर बनना है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। इसी तरह से परमात्मा के सानिध्य में पहुंचने के लिए ईश्वर शरणागति के साथ, आप कॉलेज तो चले गए तो क्या कॉलेज में एडमिशन ही से आप पास हो जाएंगे? वहां पर कुछ नीति नियम है, उसका पालन करना पड़ेगा, तब आपको डिग्री मिलेगी। फिर उस डिग्री के बाद भी आईएएस की, आईपीएस की परीक्षा होगी, उसमें पास होना पड़ेगा, इंटरव्यू, साक्षात्कार। केवल मिठाई की दुकान देखने से मिष्ठान नहीं मिलेगा, केवल अपने नाम के साथ जौहरी लगाने से आप हीरे चांदी के व्यापारी नहीं हो जाएंगे, केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से आप महान नहीं हो जाएंगे, केवल मंदिर में जाने से आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, कुछ करना पड़ेगा। आप जाइए स्कूल का दर्शन करके आ जाइए, डिग्री मिलेगी। आप स्कूल में एडमिशन लेने के बाद नहीं पढ़ते हैं, वहीं चुपचाप बैठे रहते हैं, तो फल क्या मिलेगा? जैसे स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं, नीति नियम है, रेगुलर जाते हैं, पढ़ते हैं, तब धीरे धीरे आप महान बनते हैं। इसी तरह ईश्वर शरणागति एक कॉलेज की तरह एडमिशन है। केवल मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, केवल कॉलेज जाने से कुछ नहीं होगा। ये तो एक शुरुआत है, एक प्रारंभ है। जैसे खास खास स्कूल के यूनिफॉर्म होते हैं, ऐसे ही यूनिफॉर्म है कि हम ईश्वर के प्रति शरणागत है, एडमिशन हो गया है। लेकिन एडमिशन सब कुछ नहीं है कि एडमिशन देते ही, फीस देते ही मैं लायक बन जाऊंगा, या गेरुआ कपड़ा पहनते ही मैं महान से दो जाऊंगा। अब वो क्या क्या है ईश्वर शरणागति? एडमिशन तो हो गया, चलो आप मेरे पास आए, कहीं भी गए, किसी मंदिर मस्जिद पर गए, पहला तो ये है कि मान की इच्छा रखने वाला तैयार रहे अपमान सहन करने के लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, मान चाहते हो तो अपमान आएगा। ये जगत द्वंद्वात्मक है, आप लाभ चाहते हो तो हानि होगी, आप सुख चाहते हो तो दुख आएगा। तो क्या हम मान न चाहें? क्या हम सुख न चाहें? क्या हम सफलता न चाहें? नहीं। समझिए, राम की सफलता, कृष्ण की सफलता, गांधी की सफलता, विवेकानंद की सफलता, अरविंद घोष, रमण महर्षि की सफलता, सफल बनना चाहते हो तो हमें इस जगत में अपमान को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आप मान को स्वीकार कर रहे हैं, अपमान को नहीं। आप सफलता को स्वीकार कर रहे हैं, सफलता को नहीं। आपकी तैयारी सुख स्वीकार करने की है, दुख नहीं। अब देख लीजिए, जिसने अपमान को पचा लिया उसका मान बढ़ेगा। भगवान शंकर ने अपमान जहर पिया, आप मान ही चाहते हैं, अपमान को नहीं पचा पाते, इसलिए उल्टी हो जाती है, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, गाली दोगे, उसको गिराने की कोशिश करो। लेकिन जिसने अपमान पचा लिया तो मान और बढ़ेगा, जिसने दुख को पचा लिया उसका सुख और बढ़ेगा, जिसने हानि को पचा लिया उसका लाभ बढ़ेगा। लेकिन हम तो 24 घंटे लाभ सोचते हैं, इसलिए हानि आते ही क्रोध आ गया। एक छोटी सी कहानी मनो विज्ञान पर आधार है। पिता कुछ नाराज हैं, मित्र आया, मित्र पूछता है आप क्यों नाराज हैं? लड़के से कहा कि मित्र के लिए, बाप ने कहा बेटा मित्र के लिए दूध लाओ, पुरानी कहानी, दूध लाओ। दूध लेने के लिए अंदर गया पुत्र, मनोवैज्ञानिक कहानी है, कल्पना है। मित्र कहता है आपका पुत्र बहुत प्रसन्न है और आपके चेहरे पर थोड़ी दुख की रेखाएं नजर आ रही हैं। तब तक दूध आ गया, कहानी है। कहते बेटा तुम बड़े प्रसन्न हो और आपके पिता चेहरे से थोड़े दुखी नजर आ रहे, क्या बात है? कहा कुछ समझ समझ की बात है। लड़का कहता समझ की बात है। कहा क्या? कल तक हमें 1 लाख का 1,40,000 मिल रहा था हमारी लकड़ी का दाम, तो मैंने कहा पिताजी बेच दो, पिताजी नहीं बेचे, फिर 1,30,000 हुआ, फिर भी नहीं बेचे, 1,25,000 हुआ नहीं बेचे, 1,20,000। अब इनको सोचा है घटता जा रहा है, तो पहले 1,40,000 मिल रहा था पूरी लकड़ी का और हमें भाव गिरता गया तो 1,20,000 में बेचे। तो पिताजी के चेहरे पर दुख की रेखा है कि पुत्र की बात मान जाता तो 1,40,000 और 20,000 का घाटा हुआ, 1,20,000। मैं घाटा नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 1,00,000 का 1,20,000 मिला और ये जो है 1,40,000 में 20,000 घाटा देख रहे हैं। पिताजी नुकसान देख रहे हैं, इसलिए इनके चेहरे पर दुख की निशानियाँ आपको नजर आ रही, और मैं सोचता हूँ चलो 1,00,000 का 20,000 तो मिला इसलिए मैं खुश हूँ। ये समझने की बात, 1,00,000 का 20,000 तो मिला, लेकिन नहीं, यही दुख का कारण हमारा विचार है। इसलिए हम अच्छे काम करेंगे, अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी, तो क्या प्रतिकूलता देख करके हम अच्छा काम करना छोड़ दें? राम के सामने कितनी प्रतिकूलता आई, किसके सामने कितनी आई? राम तो अपने महल में रहे और महल में से निकालने वाली जिसे माँ बोलते हुए ये प्रतिकूलता है कहते, और किसकी प्रतिकूलता तो जन्म से है, उसके पहले मामा ने ही कितनी परेशानी पैदा की और मामा के डर के मारे लेकर भागना पड़ा, ये भी प्रतिकूलता, या विचार करो। राम के जन्म महल में हुआ फिर भी प्रतिकूलता से महल से निकले, और कृष्ण की प्रतिकूलता तो जन्म से ही है लेकिन दोनों भगवान बने, स्वीकार किया। इसलिए भय प्रतिकूलता का आने से, दुख का विचार आने से, हानि का विचार आने से, असफलता का विचार आने से, अगर पलायनवादी बनोगे तो जिंदगी में कभी न सुख आने वाला है, न सफलता आने वाली है, न जीवन में कुछ बनने वाला, इसलिए पहले स्वीकार करो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप गांधी जी की पूजा कर रहे हो, गांधी जी की जीवन देखिए, या गांधी फिल्म देखिए, रोना आ जाता है, और अंत में गोली खाने पर भी हे राम बोले, हम गांधी जी तो बनना चाहते हैं, गोली छोड़िए, कोई पड़ोसी बोल दे तो उसे गोली मारने के लिए तैयार है, वो गांधी बनना चाहते हैं, या विचार के हम एक अच्छे महात्मा बनना चाहते हैं, हम एक अच्छे महात्मा बनना चाहते हैं, भगवान बुद्ध बनना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध को कितना दुख उठाना पड़ा है, एक भगवान बुद्ध का दुख आपको बता दो है तो बहुत। हमेशा लोग विरोधी तो होते ही, लेकिन जो बहुत धर्म के मानने वाले हैं, मैं तो अध्ययन किया उनसे पूछिए, सभी धर्मों का अध्ययन किया, कुछ लोग भगवान बुद्ध के विरोध में थोड़ा इशारा करते हैं। एक बिकने वाली, पैसे से बिकने वाली नारी को विरोधियों ने पैसा देकर मिलाकर कहला दिया कि मेरे घर में जो बालक पल रहा है वो भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध तक बात आई, लोग गालियां देना शुरू किए, लेकिन एक शिष्य सभी छोड़ के चले गए, केवल एक शिष्य रहा, कहते गुरुदेव अभी तो आप कितना अपमान हुआ, ये दरभंगा की बात है कि यहां से चले, कहा नहीं सत्य नहीं बात झूठ बात, जब तक इनके मन से ये जो गलत बात है निकल नहीं जाएगी, अगर जाऊंगा तो ये सत्य का अपमान होगा। थोड़े देर रहो, लोग पत्थर मारना शुरू किए, गालियां देना शुरू किए, जिसने कुछ पैसे लेके इल्जाम लगाया तो उसके दया ये मैं क्या कुछ पैसे के लिए मैं क्या फिर। उसने जाकर समाज को बुलाया और कहा कि तथागत को मतलब बुद्ध को बदनाम करने के लिए मुझे 50 चांदी की मोहरें दी गई और जिसने दिया वो सब बताया। फिर लोग आकर हाथ जोड़ने लगे, मेरे से भूल हो गई। फिर कहते बेटा आनंद, मुख्य नाम आनंद था, बेटा आनंद अब सत्य प्रकट हो गया, दुनिया को देख लिया मैं कैसी है, इसलिए दुनिया का बहुत विश्वास न करना बेटे, अपने सत्य पर रहना, सत्य प्रकट होगा झूठ भी प्रकट होगा, इसलिए अब यहाँ से चलो, कम से कम मेरे कारण आने वाले दूसरे साधुओं का अपमान तो नहीं होगा। अगर मैं चला जाता तो मेरे बाद जो भी आते उनका भी अपमान होगा, और अपने कारण दूसरों का अपमान हो इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई। लेकिन टिके रहे और आज या विचार कीजिए। इसलिए भगवान बुद्ध बनना चाहते हो, कलंक झूठा आप जानते हो फिर भी टिकना नहीं चाहते, आप बदला लेना चाहते हो। भगवान बुद्ध ने कहा जिस व्यक्ति में वो जानता है कि झूठ है और बदले की भावना मन में आती है तो झूठा कलंक इतना नुकसान नहीं करेगा जितना झूठा कलंक सुन करके दूसरे को गिराने की बदले की भावना मन में आ जाती है, पहले आप गिर जाते हैं। इसलिए अगर आप सच्चाई पर हैं तो फ्लड आने दो, पहाड़ आने दो, दूर आने दो, सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, और यही हमारे कृष्ण ने कहा मैं सत्य के साथ हूं, ये 5 मेरे साथ है, सामने असत्य पर 100 है और इनके साथ मामा है, इनके साथ गुरु है द्रोणाचार्य, इनके साथ पितामह है, सब ये तीनों सिद्ध है, 100 इनके साथ है, लेकिन विजय पाप की होगी इनकी होने वाली नहीं, क्योंकि असत्य पर एक दिन तो प्रकट होगा ही। एक बड़ी सुंदर बात होता था, जादूगर बहुत कुछ दिखाता है, आपके सामने पेड़ दिखा देगा, फल दिखा देगा, आपको हिप्नोटाइज करके पता नहीं क्या क्या दिखाएगा, फिर भी शाम का भोजन जो टिकट लगाता है जो असली रुपया है उस पर से गेहूँ खरीद के लाता है, वो जो जादू दिखाता है वो रुपया काम में नहीं आता। हमने कितने जादू देखा, पैसा निकालते हैं तो नाक में से कान में से, मैंने कहा हो कि नाक कान में से निकालते हैं तो 10 रुपये टिकट क्यों लगे, या सोचो तो। इसलिए जो सत्य है उसका सहारा, और सत्य का सहारा लोगे तो फांसी के तख्ते तक जाना पड़ेगा, लोग कलंक भी लगाएंगे, पत्थर भी मारेंगे। आप जानते हैं कबीर की जेल हो गई थी और जेल में उनसे काम लिया जा रहा था पीसने का, फिर भी मत संत ज्ञानेश्वर रोना आ जाता, उनके ही जाति वालों ने क्या क्या कलंक लगाया। इसलिए ईश्वर शरणा गति का मतलब ये नहीं हे भगवान मैं तेरी शरण में हूं ये कलंक क्यों लगेगा, ये हानि क्यों हुई होगी, ये असफलता क्यों मिली मिलेगी, लेकिन अंतिम सफलता अंतिम फल आपको मिलेगा, पहले नहीं, पहले इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और वही मन तैयार नहीं होता तो आप भगवान से क्या कहते हैं सौदेवा जी, और एक सौदेबाजी तो बड़ी अच्छी है भगवान की, मेरा काम होगा तब आपका दर्शन करने आऊंगा। भगवान को क्या करोगे कि तुम्हारा काम करे हो तुम्हारा, तुम जैसे लुच्चे का दर्शन करने को भगवान को क्या जरूरत। अरे लोग मुझसे कहते फोन पे कहते पढ़े लिखे लोग, मेरा काम होगा तब आपका दर्शन करने आए हैं। मैंने कहा ऐसा करो कोई रावण का दर्शन करने जाओ, मेरी जरूरत मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। अच्छे काम की बात नहीं जो सिखा रहा हूँ, बस मेरा काम होगा तब आपका दर्शन करने आए। एक बार किसी ने कहा तो खुलेआम कर, मैंने कहा जब तक नर्मदा में पानी है और पेड़ के पत्ते हैं तब तक मनीषानंद भीख नहीं मांगेगा, और भीख मांगने की नौबत आई तो मैं योगी हूँ, मैं किसी और लोक में प्राण छोड़ के चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे दरवाजे भीख मांगने नहीं। तुम लोग अपने लिए आते हो मेरे लिए आते हो, या विचार कर। सच्चाई का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, सच्चाई के एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बहुत बड़ा पेड़ है, फिर इसका समझा दूं, आप भी बड़े हम भी बड़े सब बड़े ही हैं। एक बहुत बड़ा पेड़ है, कुल्हाड़ी ने पेड़ को काटना शुरू किया लेकिन नहीं काट पाई, तो दो चार डाले काट दिया और हंसने लगे। तो पेड़ कहता है कुल्हाड़ी तू क्यों हंसती है, तूने मुझे जड़ से काटना चाहा लेकिन मैं सत्य पर था इसलिए सत्य को कोई नहीं काट सकता, लेकिन हमारे जो मानने वाले थे उनको भरमा के दो चार को काट दिया, लेकिन ये तो फिर नए आ जाएंगे इसलिए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सच पर चलोगे तो जड़ काटने की कोशिश करेंगे लेकिन कटेगी नहीं, तो आपके जो मानने वाले हैं झूठ बोल बोल के उनको हटाएंगे। तो यहाँ बताइए एक बड़े पेड़ में से दो चार पत्ता गिर गया तो क्या फर्क पड़ता है, नए आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या है, 1,00,000 पत्ते आपके साथ हैं लेकिन एक पत्ता टूटा तो एक पत्ते के टूटने से क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता। अरे मरे अपने लिए आता तो अपने को क्या। एक बार मुझसे पूछा गया स्वामी जी अगर आपका कोई केला नहीं आए तो आप क्या करते हैं, मैंने कहा आत्मनिरीक्षण कि मैंने कोई उसके साथ गलत व्यवहार तो नहीं किया, और गलत नहीं किया तो उसका भाग घूटा है जो छोड़ के गया, मेरा भाग नहीं घूटा, मेरा भाग नहीं घूटा। लेकिन पहले आत्ममंथन करूंगा कि कहीं कुछ मेरे साथ की भूल तो नहीं हो गई, जब भूल नहीं हुई है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बात बता, इसलिए हमारे मन में यही है, हमने ईश्वर शरणागति कर दी। स्वामी जी मुझे तो भगवान में बड़ी श्रद्धा है, और श्रद्धा का क्या लगा, जो मैं कहूं भगवान को करना चाहिए, तो ये श्रद्धा ने भगवान को नौकर बना दिया कि मालिक बना दिया। ये आपकी श्रद्धा ने तो भगवान को नौकर बना दिया, जो मैं कहूं तुम करो। इसलिए ईश्वर शरणागति को समझो, चाहे राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे गुरु को मानो, ब्राह्मण को मानो, नदी को मानो, अच्छे रास्ते चलते हुए तकलीफें आएंगे, लेकिन शरणागति का श्रद्धा के ये विश्वास है कि तकलीफें आएंगी लेकिन जहाँ श्रद्धा विश्वास है वो किसी न किसी तरह से हमें तकलीफ में से निकालेंगे। तकलीफ नहीं आनी चाहिए ये बात नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि तकलीफ में से श्रद्धा विश्वास के बल से आपका गुरु, आपका भगवान, आपका ब्राह्मण आपको निकालेगा, ये गारंटी। तकलीफ नहीं आए बात नहीं है, और ईश्वर शरणागति में परेशानियां यही है, मेरे अनुकूल काम क्यों नहीं होता, मैं रोज आना 11 माला जाप करता हूं, हे भगवान तुम्हें रोज पानी चढ़ाता हूँ, पानी तुम्हारे घर पैदा हुआ, भगवान का ही पानी भगवान को चढ़ाता और हिसाब मानते हो कि मैं रोज पानी चढ़ाता हूँ। एक बात कर, आप भगवान को भोग लगाते, भोग कहाँ पैदा हुआ, किसने दिया, एक फकीर हुए हैं, 22 करके फकीर हुआ है मुस्लिम, उसका मुरीद उसका सिर्फ उससे पूछने आता कि फकीर मैं रोज आना इतने गरीबों को रमजान के समय में इतना देता हूं, इसके बल्ले में अल्लाह क्या देगा? क्या करते हो बेटे? रोज इतने फकीरों को दान देता हूँ, रमजान के समय में ये करता हूँ, अच्छा तो ये किसकी कृपा से करो? क्या अल्लाह की कृपा से? तो जैसे अल्लाह की कृपा से रोज दान दे रहे हैं, रमजान के समय खूब खैरियत खैरात मांगते हो, ऐसे अल्लाह से कहो कि हे मेरे अल्लाह, हमारी बुद्धि ऐसी रखो कि रोज मैं देता रहूं, रमजान में खूब अच्छा काम करता रहूं, और हमें कभी किसी के घर के सामने जाकर हाथ फैलाना नहीं। कौन दे रहा? अब आज ने कहा कि फल में क्या फल मांग रहा? कि अल्लाह का कर्म है, कृपा है कि तू इतना अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम करने का ही अल्लाह से शक्ति मांग, और ये जो शक्ति है देने की मांग, बदले में क्या देगा? अरे इतनी शक्ति दे रहा है कि तू देता रहा, यही आपसे कहूंगा। आप देने की बात करें, दे करके फिर लेने की बात नहीं, वो देता रहे। नहीं यार, थोड़ा सा दान दिया तो भगवान क्या देगा? अरे किसकी कृपा से आप दान दे रहे? कई बार हमारे से इसका कहता भाई ये करा लो, ब्राह्मणों की पूजा करो, ये करो। स्वामी जी से क्या होगा? मैंने कहा गुरु से प्रश्न नहीं किया जाता, ये आपको जरा थोड़ा बता दो, गुरु से कभी प्रश्न न करना। अगर गुरु अपनी जगह ठीक है तो मैं दो उदाहरण आपको दूंगा, एक कबीर का एक रविदास। अब फिर देखो गुरु आपके लिए क्या करता है। गुरु को सलाह मत दो, गुरु सब जानता है। एक कबीर का उदाहरण है, एक रविदास। कमाल से कबीर ने कहा, दिन का समय है, सूरज निकला हुआ है, 10:30 बजे हैं। कमाल से कहा, जाकर अंदर से कुटीर में से दीपक जला कर लाओ। वो लाया, वहां बैठे थे कुछ भक्त। कमाल से पूछते हैं, श्री साहब ने कहा कि दीपक जला कर लाओ, कमरा भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, सूरज प्रखर है, निकला हुआ है, तो कमाल आपने पूछा क्यों नहीं? कहा गुरु का रहस्य गुरु जाने, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि दिन में आप दीपक को क्यों, क्योंकि दीपक उनका है, बाती उनकी है, तेल उनका है, वो मंगाए हैं, तो उनको अधिकार है। ना मैं बाती लाता हूँ, ना तेल लाता हूँ, ना मैं कुछ लाता, नहीं तो मुझे पूछने कोई अधिकार। कोई ये कहे कि तेल बेकार जला, तो उस तो कबीर का तेल है, जल मेरे क्या बाती। एक रविदास के बाद, रविदास ब्याता में स्नान कर रहे हैं, तिलस का कुटिल जाओ गंगा में स्नान कर रहे हैं। ये ब्याता वाली बात कुछ ही दूसरे फकीर के पंजाबी के, वो बताऊंगा। वो गंगा में स्नान कर रहे हैं, चेले से कहा जाओ कुटीर, थोड़ी दूर कुटीर से लोटे में गंगा जल रखा है, लाओ मैं पीऊंगा। शिष्य गया, लोटा लाया पानी, वहां कुछ लोग थे, कहते आप गंगा में स्नान कर रहे हैं, गंगा आपके चारों तरफ है, फिर भी गंगा जल के लिए कुटीर में भेजा। चेले से पूछा क्यों नहीं? कहा मेरा काम है गुरु का आज्ञा का पालन करना, शंका ये करने की जरूरत जो है नहीं। ब्यासा के किनारे की बात है, जब सिकंदर आया अच्छे संत से मिलने के लिए, तो संत खड़े नहीं हुए, तो उसको ताज्जुब हुआ। जब वो आया था हिंदुस्तान, तो उसके गुरु ने कहा था गायत्री गंगा और अच्छे गुरु का दर्शन तीन का बताया। अच्छे गुरु की खोज हुई व्यासा के किनारे, गुरु खड़े नहीं हुए तो ताजुब हुआ। सिकंदर कहता है मेरा नाम सिकंदर है, मुझे देखकर सब लोग खड़े होते हैं, आप खड़े क्यों नहीं हुए? क्या भाई सिकंदर है करता क्या है? कहते सब पर मेरा हुक्म चलता है। सबने एक सुई थी वो व्यासा में फेंक दी, कहा तुम्हारा हुक्म सब पर चलता है तो मछली से कहो कि सुई वापस लाए। कहा नहीं जी मछली पर तो नहीं चलता, तो फिर किस पर आपको हुक्म चलता है? गरीबों पर। चलो मैं कहता मछली मेरी सुई वापस कर, सिकंदर जाके मेरी मछली जो मुँह निकाल कर सुई बाहर है पानी के जाके ला। कहा सिकंदर तेरा हुक्म सब पे चलता है, मेरा हुक्म तेरे पे चलता है, तो मैं बलवान हूँ ये तो बलवान। फिर वो प्रसन्न हो कहता आप चलिए मेरे से इसे उना क्या करोगे, बहुत बड़ा आश्रम बना, फिर क्या करोगे, 200 गाय रख दूंगा, फिर क्या करोगे, 100 नौकर रख दूंगा, कहाँ आप ये देसी में बैठे हैं? कहा तू जा तो मैं उतर दूंगा, सूरज मेरे बीच में जो थोड़ा रुकावट कर रहा है प्रकाश का तो उसको छोड़, हट गया। तो मेरे और सूरज के बीच में तो सुख की बात करता है, परमात्मा ने मुझे बहुत सुखी किया, ये तेरा 200 गाय और 100 नौकर ये बीच में आके मुझे दुखी कर देंगे, तू अपना सुख अपने साथ ले जा, मैं सुखी हूँ मैं दुखी नहीं हूँ। फिर जाकर किया बहुत कुछ काम, तो जा देख लीजिए और विचार कर लीजिए। आज जो ईश्वर शरणागति पर आपके सामने विचार देना है ये होना है, लेकिन हम लोग तो कुछ और अर्थ लगा लेते हैं उसकी बात कर रहा। अपमान को भी सहन करना पड़ेगा, मान बढ़ेगा, दुख को सहन करना पड़ेगा तो सुख बढ़ेगा, हानि को स्वीकार करोगे तो लाभ होगा, केवल लाभ ही देखोगे तो हानि में मर जाओगे, केवल सुख जोगे सुख देखोगे तो दुख में खत्म हो जाओगे, केवल मान ही देखोगे अपमान में मुंह नहीं दिखा सकोगे। इसलिए ईश्वर शरणागति का है, जो होना है हो जाए, लेकिन मैं अपने कर्तव्य का जो पालन है उसका त्याग ना, तुमको कितना जहर पीना पड़ा खिजे तक का कपड़ा, वो भी ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागत है। आप रोजाना भक्तों की बात सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, पूरे विश्व में गीता का प्रचार हो रहा है, लेकिन गीता के वाचन का जो गूढ़ अर्थ है वो क्यों नहीं समझते? एक जिम्मेदार आदमी के मन में ही निराशा हताशा ये विषाद का अर्थ क्या, डिप्रेशन। अर्जुन एक जिम्मेदार व्यक्ति है, विषाद हुआ दूर किया गया। विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आया तो कहता है मुझे गीता पर कुछ सुनाइए। कहा किस नौकरी में से निकाला गया? कहा मैंने नौकरी नहीं की, निकालने का सवाल नहीं उठता, तो तेरे क्या समझा, क्या तेरे को विषाद पैदा हुआ जो गीता को सुनना चाहता है? कहा नहीं को सुनना चाहता, पहले नौकरी कर और तकलीफ पड़े विषाद आए डिप्रेशन आए तो मेरे पास आना, और अच्छी तरह नौकरी कर रहे हो तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। गीता का प्रारंभ कहाँ से हुआ? एक जिम्मेदार व्यक्ति जब विषाद विषाद करते डिप्रेशन, तो गीता किसके लिए? जिम्मेदारी निभाते समय जिनका मन कमजोर हो जाए, जो पलायनवादी बने उनके लिए, जिन्होंने अभी जिम्मेदारी ली नहीं उनको मैं गीता क्या सुनाऊं? बहुत सुंदर बात हो गया। इसलिए सबको जिम्मेदारी लो और उसमें जो तकलीफ आए तो हम साधु संत उसमें सदास्ता निकालेंगे, ब्राह्मण निकालेंगे, बताते हैं रास्ता। इसलिए ईश्वर शरणागति का मतलब नहीं कि हमने माला घुमाई जो मैं कहूँ भगवान करें, हमने भगवान को दूध पिलाया तो जो कहूँ करें, हमें भगवान को कुछ चढ़ा दिया, ये नहीं, ये भगवान एक रुपया दिया तो एक महीने में 1 लाख मिलना चाहिए। एक बात का, एक हंसी की बात सुनाए, रास्ते में किसी को 100 रुपया मिला, नोट जूना था, जाकर बदले तो 5 रुपया काट लिया। जब नोट मिला था तो कहा, हे भगवान आज 100 रुपया मिला है तो 5 रुपये का प्रसाद मंदिर में चढ़ाऊंगा। नोट बदलने वाले ने 5 रुपया कम करके 95 दे दिया। कहते वाह अल्लाह वाह भगवान, तू पहले ही अपना कभी धन इसके द्वार ले लिया, दूसरे 5 रुपया क्या क्या अर्थ लगा। 100 में से 5 रुपया कट गया तो फिर अल्लाह ने ले लिया। एक बात, एक और आपको हंसी की बात सुनाए, किस तरह से होगा। हे भगवान, तो एक काल्पनिक कांड, हे भगवान मुझे 10 रुपया रोज दो तो ये जो पड़ोस में रहते हैं इनको रोज 2 रुपये का नोट दूंगा। आप मुझे 10 रुपया दो तो पड़ोसी जो गरीब है उसे 2 रुपया रोज दूंगा। आवाज आई कि भाई मैं इसको सीधे ही 8 रुपया दे दूंगा, तुझे 10 देकर 2 कर देने क्या जरूरत, बाकी दे तेरा 2 रुपया जो है वो काट लूंगा। क्या भगवान से सौदेबाजी कर, माँ ने कितना दूध पिलाया सौदेबाजी हो सकती है, नर्स से पिता ने किस तरह हमें पाल पोस के बड़ा किया, क्या सौदेबाजी कर सकते हो, क्या गुरु सौदेबाजी कर सकते हो, भगवान से कर सकते हो। इसलिए याद रखिएगा, परमात्मा हो कि माता पिता गुरु हो, जहाँ सौदेबाजी होगी वो सौदा कभी आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए कभी भी आपको चिर शांति मिलने वाली भी नहीं। जो कुछ है उसे देना सीखो, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए सूक्ष्म अहम का त्याग करो, ये भी दीवार बन के खड़ा हो जाता है। मैं तो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त हूं, नरसिंह मेहता का पढ़िए, ठंडी में ठंडा पानी भी सिर पर, उस कहानी आप जानते हैं, घर की ये बात है, घर के लोग चिड़े हुए थे कि बस प्रभु का नाम लेता करता धरता कुछ नहीं, देर हो जाने से आए तो ठंडा पानी, फिर कहते शिव शिव आज यही सही या विचारते। आप सुदामा का पढ़िए, 5 घर मांग के खाते थे फिर ईश्वर कृपा मानते हैं, वो कर्म की बात है। इसलिए आप सबसे कहूंगा, ईश्वर विराट है, विराट में राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं, अल्लाह भी हैं, जैसा क्राइस्ट भी हैं, सब गुरु भी हैं। एक के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाओ, पूर्ण शरणागत हो करके रोज अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म चाहे हिजड़ा कपड़ा पहना दे कि भीख मंगा दे, वो सब स्वीकार। कर्म करते समय चाहे अपमान हो, चाहे जहर पीना पड़े, ये भी ईश्वर का प्रसाद समझ के पी जाओ। ये आपको करने की जरूरत नहीं। विवेकानंद ने अपने गुरु से पूछा, आप इतने सिद्ध हैं फिर भी आपको कैंसर हुआ, काय मेरा कर्म, तुम कहो बेटे इसे अभी मिटा दो, लेकिन ये भोगने के लिए मुझे जन्म लेना पड़े। मैंने बैंक से, आपने हमने बैंक से 1 लाख रुपया लिया तो ब्याज माफ होगा, कर्म तो भोगने पड़ेगा। प्राण किससे, किसी ने कहा शायद दूसरे के लिए, कहा वो भी हो सकता, मैं आपका गुरु हूं, पहले समझिए। 1 लाख मैंने बैंक से लिया, बैंक वाले वसूल करने आए तो आप लोगों ने कहा कि भाई गुरु पर जो देवा है बैंक का हम दे देंगे, तो आप देते हैं। तो जैसे मेरा बैंक का देवा पता लगने पर आप देते हैं, ऐसे 10% आपका भी जो अशुभ कर्म है वो गुरु भी खाता है, गुरु भी लेता है, आपको पता नहीं चल, उस लाजमी है 10%। ये सब रामकृष्ण परमहंस की बात है। इसलिए हमारे यहाँ पहले क्या था, शिष्य समझ के बनाया जाता था, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कबीर साहब के जीवन की घटना है, सत्य है, किसी ने अन्वय विनय किया शिष्य बना लिया और उससे कहा कि बेटा कबूतर मत खाना, फिर भी गुरु की बात को नहीं हम सुना कर दिया। कहानी है, कबीर पंथियों से पूछ प्रमाण, मर गया। चित्रगुप्त ने पूछा कि तुम कबीर का शिष्य होकर के कबूतर बहुत खाया, मुझे तो कबीर साहब को पूछना पड़ेगा कि आपके चेले को कहाँ भेजूं, क्योंकि आप तो बड़े ही सिद्ध हो, कहीं मेरे पर न नाराज हो जाओ। चित्रगुप्त ने कबीर को याद किया, अस्तित्व हमेशा होता है। ये जो आप सुने हैं, कभी कोई चांद पे जाता, आज भी जा रहे हो, यहां से जा रहे हो, ये सब कोई कभी मरता नहीं, केवल शरीर जो है प्रकट अप्रकट होता। कबीर पहुंच गए कि आपका चेला कबूतर बहुत खाया, आपने मना किया था, अब इसको नरक में भेजू कि स्वर्ग में, मैं आपसे इन सिद्धियों से डरता। कहे बेटा मुंह खोल, कबूतर निकलने लगा। कहा चित्रगुप्त अपने जितने कबूतर मेरे चेले ने खाया गिर लो, अब आपका सारा कबूतर वापस कर दिया। तो कहे हाँ, तो कहाँ भेजो, कहा स्वर्ग में, कहा स्वर्ग में भेजो। तो गुरु तो मरने के बाद भी आपके रक्षा कर रहा, जीते जी कौन। कहानी है कबीर, ठीक है, चेले ने गलती किया, कर ले गुरु थोड़े गलती करे, गुरु ने गलती कर। ये जोधपुर की बड़ी प्रसिद्ध बात है, लेकिन पुरानी है, 40 साल पहले राजकुमारी से गलती हो गई, गुरु ने अपने ऊपर ले लिया, तो जोधपुर से निकाले गए, पत्थर मारा गया, बलि, फिर राजकुमारी की शादी हुई, सब कुछ हुआ। मेरे झूठ बोलने से गुरु को बचाने, मुझे बचाने गए, गुरु ने बोला। फिर एक दिन अपनी माँ से कहा कि पिता को हकीकत बताओ। पिता कहे मालूम पड़ी, 2 साल हो गए थे गुरु की हालत है, गए पाँव में गए। कहे गुरु जी आपने क्यों किया, संक्षेप में, आपके रिश्तेदार का नाम अगर लेते तो आपके स्वभाव को जानते, आप पूरे रिश्तेदारी को खत्म कर देते और मामला बिगड़ जाता। आपका घर आपके रिश्तेदार के घर को बनाने के लिए मिटे नहीं, इसलिए मैंने अपने ऊपर लिया। कहा धन्य हो गुरु, कहा वापस के लिए वापस। कहा कि गुरु गलती नहीं करता, चेला गलती करता है, इसके लिए प्रायश्चित करो कि कभी 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 भी किसी संत गुरु पर इल्जाम नहीं लगाओगे तो मैं चलूँ। ये जोधपुर घटना है स्वामी माधवानंद जी, ये बड़ी प्रसिद्ध है राजस्थान कि गुरुओं ने तो आपको बचाने के लिए जीते जी कलंक भी अपने ऊपर ले, तो मरने के बाद क्यों नहीं ले। इसलिए आप जिसे भी मानते हो इतना जान लो कि अच्छे मार्ग पर कठिनाइयां आएंगी, जहर पीना पड़ेगा। मरने के लिए एक बार जहर पीना, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलते हुए कदम कदम पर जहर पीकर बचा कर चलना पड़ेगा, बस। इसलिए आज ईश्वर शरणागति पूजा समझे, श्रद्धा को समझे। श्रद्धा विश्वास मतलब ये नहीं कि मैं जैसा चाहूंगा ईश्वर करेगा, नहीं, कर्म भोगना पड़ेगा, लेकिन वो भोग करके और मैं सशक्त बनूंगा और बलवान बनूंगा। इसलिए मान को पचाना सीखो और उसके साथ अपमान को भी पचाना सीखो, दूध को पचा सकते हो, जहर को भी पचाना सीखो। और विज्ञान कहता है जहर जो पचा सकता है वो महान बलवान है, दूध तो कोई भी बचा सकता है, मांस तो दूध है, कोई भी बचा सकता है, लेकिन अपमान जहर है, जहर को कोई नहीं समझ, जो होगा वही बचाएगा, मान करेगा। इसलिए जैसे मान को बचाते हो ऐसे अपमान को बचाओ, जैसे सुख को बचाते हो ऐसे दुख को बचाओ, जैसे लाभ को बचाते हो ऐसे हानि को बचाओ। ये है ईश्वर शरणागति, कर्म करते रहो, आएंगी परेशानियां, लेकिन जिसके प्रति समर्पित हो वो आपको परेशानी में से निकालेगा। ये श्रद्धा विश्वास रख करके रोजाना अपना काम प्रारंभ करो, ईश्वर को साथ रखो और कुछ भी हो जाए ईश्वर का प्रसाद मानकर उसे पचाने की कोशिश करो और जीवन में महानता प्रकट होगी और आप साधारण असाधारण हो जाएंगे, एक सामान से असमान हो जाएंगे। जगत आपकी पूजा करे, आप आदर करेगा घर में भी और घर के बाहर। छोटी छोटी बातों में तनाव आना, क्रोध आना, दूसरे से बदले की भावना आना, कि हमारी शक्ति को छीन करते हैं, हमें मिटा देते हैं, हमें कहीं के भी नहीं रखते। जैसे एक चिंगारी पूरे घर को कोठी को जला देती है, ऐसे एक बुराई सारी अच्छाइयों खत्म कर देती है। तो राग द्वेष बदले की भावना मिथ्या अहंकार इससे बचो, और बच करके अगर फिर भी होता है तो उसे बचाओ और आगे बढ़ो। ये है ईश्वर शरणागति। हरि ओम।
बाद में आता हूँ।